kunjadi hari jaya radha madhava kunjadi hari जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचारी अष्टोत्तरस्त्री श्रीमदिस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रेसेस कॉन्फाउंडर आचार्य सेव दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से गहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्ति वृंद की जय श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय श्री श्री गौनताई भगवान की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय समवेत भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिंपल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिंपल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिंपल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौराम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारू अध्याय 11 विराट रूप श्लोक संख्या 2 पृष्ठ संख्या 363 बोलिए भव अप्यय हि भूतानां श्रुता विस्तर्षः मया त्वत्तः कमल पत्र अक्ष माहात्म्यम् अपि च अव्ययम् भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तर्षो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि चाव्ययम् भवाप्ययो हि भूतानाम् श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि चाव्ययम् भवाप्ययो हि भूतानाम् श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि चाव्ययम् संतार्थ बोलिए भाव उत्पत्ति अप्यय लय प्रलय ही निश्चय ही भूतानां समस्त जीवों का श्रुतो सुना गया विस्तरशः विस्तार पूर्वक मया मेरे द्वारा तत्तः आपसे कमल पत्र अक्ष हे कमल नयन महात्म्यम महिमा अपि भी च तथा अव्ययम् अक्षय अविनाशी हे कमल नयन मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। स्वामी नामिनी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषं सुनवादी पाश्चात देश तारिणे। श्लोक फिर से निकालिए। श्लोक समझेंगे। अर्जुन कह रहे हैं भवाप्ययो हि भूतानाम श्रुतो विस्तरशो मया कि मैंने सुना सब प्राणियों का भव और अप्यय यानी जन्म और मरण उत्पत्ति और विनाश सब प्राणियों का मैंने सुना है विस्तार पूर्वक आपसे और त्वत्तः आपके द्वारा सुना है। कमल पत्राक्ष हे कमल पत्र के समान नेत्र वाले कृष्ण महात्म्यम अभिचाव्यम और अविनाशी महात्म्य भी सुना है आपका सब प्राणियों का जन्म मरण और आपका अविनाशी महात्म्य मतलब आप में जन्म मरण नहीं है ये बात भी मैंने विस्तार से सुनी है ना। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं शिला प्रभुपाद की। अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन कमल के नेत्र नहीं कृष्ण के नेत्र कमल के फूल की पंखड़ियों जैसे दिखते हैं कहकर संबोधित करते हैं क्योंकि कमल के फूल की पंखड़ियों जैसे कमल पत्र अर्जुन ने क्या कहा है कमल पत्र अक्ष अक्ष माने नेत्र वाले कमल पत्र माने कमल के पत्ते ठीक है ना कमल के पत्ते के समान नेत्र वाले नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारे बिन्दा यत पत्र नेत्र फुल्ल खिले हुए कमल के चौड़े पत्ते के समान नेत्र वाले है ना। तो कमल का पत्ता जैसे चौड़ा होता है उसी प्रकार से भगवान के नेत्र चौड़े हैं कमल पत्र अक्षय कृष्ण के नेत्र कमल के फूल की पंखड़ियों जैसे देखते हैं। तो अर्जुन ने कृष्ण को संबोधित किया है क्यों बहुत प्रसन्नता है अर्जुन को बहुत प्रसन्नता है इससे अर्जुन को प्रसन्नता हो गई है। प्रभुपाद जी कहते हैं अर्जुन को प्रसन्नता हुई है, है? और इसके पहले अर्जुन विषाद में थे। पहला अध्याय अर्जुन का क्या था अर्जुन विषाद योग। तो पहले अध्याय में अर्जुन बहुत विषाद कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं, है? क्यों? मोह में। और अभी अर्जुन ने क्या कहा पिछले श्लोक में, मोहो अयम विगतो मम, मेरा मोह चला गया है। तो फिर क्या हुआ, मोह से जो विषाद था, शोक था, वो दूर हो गया। तो शोक दूर हो गया तो फिर क्या है, प्रसन्नता है, है ना। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं प्रसन्नता के कारण अर्जुन ने कृष्ण को कमल पत्र से कहा है, प्रसन्नता के कारण। हाँ, ये पहली बार अर्जुन ने कृष्ण को कमल पत्र अक्ष कहा है, कमल पत्र अक्ष पहली बार कहा है ये। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन बहुत प्रसन्न हो गए हैं। क्यों? दसवें अध्याय में विभूतियां भगवान के श्रवण की हैं अर्जुन ने, तो बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि इसमें कृष्ण का अविनाशी महात्म्य है। कई प्रकार से जो है विभूतियों का वर्णन सुन करके अर्जुन प्रसन्न हो गए हैं, है ना, अमृत प्राप्त हो गया है, है ना। इसलिए अब अर्जुन कृष्ण को कमल पत्र से कह रहे हैं। जबकि अब दुखी थे तो कृष्ण को क्या बोलते थे, जनार्दन, मधुसूदन, कृष्ण, केसी, केसी निशोधन, है ना, गोविंद, ऋषिकेश, है कि नहीं। तो इस प्रकार से अर्जुन ने कृष्ण को संबोधित किया है, माधव, केशव, है, पत्रलोचन, पद्मलोचन, नहीं, अभी अभी अर्जुन ने कहा है कृष्ण को पद्मलोचन या कमल पत्राक्ष, अभी कहा है, ये पहली बार कहा है। अच्युत कहा है। जब दुखी हैं तो अर्जुन ने ये सब नाम उच्चारण किए हैं, कमल पत्राक्ष अब कह रहे हैं, कमल पत्र, कमल पत्र के समान नेत्र वाले अर्जुन, प्रसन्नता है अर्जुन को। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि प्रसन्नता के कारण अर्जुन ने कृष्ण को कमल नयन कहकर संबोधित किया है, क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया है, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभुः प्रलयः तथा, मैं इस संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूं। तो प्रभुपाद देखते हैं किसी पिछले अध्याय में, लेकिन आपको पता कौन से अध्याय में, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभुः प्रलयः तथा, कौन से अध्याय में, सातवें अध्याय में, सातवें अध्याय में, एतद् योनेन भूतानि सर्वाणि चुभधारय अहम् कृष्णस्य जगतः प्रभुः प्रलयः तथा, है ना, छठवां श्लोक, सातवें अध्याय का छठवां श्लोक है, निकालिए सातवें अध्याय का छठवां श्लोक, पेज नंबर 245। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, एतद् योनेन भूतानि सर्वाणि चुभधारय अहम् कृष्णस्य जगतः प्रभुः प्रलयः तथा, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है, इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानूं, तो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय मेरे कारण है, है ना। तो ये जो श्लोक प्रभुपाद ने उद्धृत किया है ये बड़ा ही मतलब बिल्कुल सटीक है, क्योंकि अर्जुन ने क्या कहा है कि सब प्राणियों का उत्पत्ति और विनाश मैंने सुना है आपसे, और आपकी अविनाशी महिमा सुनी है, कि आपकी महिमा में कमी नहीं आती कभी भी, ना आपका जन्म होता है ना मरण होता है, और आपकी महिमा भी कभी घटती नहीं है, और प्राणियों का हमेशा जन्म मरण चलता रहता है, है ना। तो वो श्लोक इसी प्रकार का है कि एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि चुभधारय, कि कृष्ण की जो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के संयोग से ही ये सृष्टि होती है, और ये परा प्रकृति और अपरा प्रकृति अलग हो जाती है तो प्रलय होती है, और कृष्ण जो है ना इसके कारण है। जब दृष्टि डालते हैं अपनी अपरा प्रकृति पर, तो जो परा प्रकृति के अंश जो जीव हैं अपरा प्रकृति में पहुंच जाते हैं और सृष्टि होती है, है ना। और जैसे ही कृष्ण दृष्टि को अपनी समेट लेते हैं, जो परा प्रकृति है वो भी कृष्ण के शरीर में चली जाती है, अपरा प्रकृति अलग हो जाती है और प्रलय हो जाता है, है ना। तो बिल्कुल मतलब सटीक श्लोक है प्रभुपाद ने जो उद्धृत किया है। अच्छा, तो विस्तार से अर्जुन कहते हैं कि विस्तार से मैंने सुना है, अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने विस्तार से सुना है, क्या विस्तार से सुना है, कौन बताएगा? हाँ नहीं, लेकिन इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने विस्तार से सुना है। क्या विस्तार से सुना है? हाँ, भवा प्यो ही भूत नाम, प्राणियों के उत्पत्ति और प्रलय को विस्तार से सुना है। प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार से सुनी है। यहां पर विस्तार का मतलब वो नहीं है कि वो विधि भगवान ने विस्तार से बतलाई हो कि प्रलय कैसी होती है, प्राकृतिक प्रलय कैसी होती है, नैमित्तिक प्रलय कैसी होती है, आत्यंतिक प्रलय कैसी होती है, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, तो वो विस्तार से नहीं बतलाया भगवान ने गीता ने। क्योंकि तो भगवद गीता जो है ना युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को जो भगवान बतला रहे हैं तो इतना समय नहीं है कि भगवान उत्पत्ति और प्रलय को विस्तार से सुना है। जैसे भागवतम में है सृष्टि का वर्णन बहुत विस्तार से है ना। कोई व्यक्ति सोचे कि नहीं, यहां अर्जुन ये कह रहे हैं कि प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय को विस्तार से सुना है, तो वो भागवतम का विषय है। भागवतम में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर ब्रह्मा जी से उनके प्रजापति लोग कैसे हुए, फिर उनके संतान कैसे, उनका विवाह कैसे हुआ, तो वो यहां नहीं है कि अर्जुन ने विस्तार पूर्वक सुना हो। और फिर अप्य माने मतलब विनाश, विस्तार पूर्वक भागवतम में बताया गया है विनाश कैसे होता है, तो बहुत विस्तार से बताया गया है कि मतलब 100 साल तक वर्षा नहीं होती है, तेज धूप पड़ती है, समुद्र सूख जाते हैं, फिर 100 साल तक वर्षा होती रहती है, और रुद्र जो है ना 11 रुद्र हैं वो फिर विनाश करते हैं, तो बहुत विस्तार से सृष्टि और प्रलय का वर्णन श्रीमद् भागवत में। तो यहां पर अर्जुन का ये कहना नहीं है कि मैंने सृष्टि की विधि और प्रलय की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना, नहीं ये नहीं। फिर यहां पर विस्तार का मतलब क्या है? बार बार। यहां पर मतलब अर्जुन का कहने का यह है कि भगवान के मुख से बार बार ये बातें सुनी है कि जीवों को कैसे जल्दी जल्दी शरीर प्राप्त होते हैं और उनको मरना पड़ता है, और भगवान का जो ना प्रभाव अविनाशी है, ये भी बार बार अर्जुन ने सुनी है बातें। तो यहां पर विस्तार का मतलब वो नहीं है कि विस्तार, बल्कि यहां विस्तार का मतलब क्या है? बारम्बार है। तो अगर पिछले श्लोकों में आप देखें, पिछले अध्यायों के श्लोकों में देखें, तो आपको जो है ना मतलब ये बार बार विचार आएगा आपके दिमाग में कि बड़ी जल्दी ये जन्म मरण ये चल रहा है इस संसार में लोगों का, ये जीवन बहुत छोटा है, अनित्य है। तो ये जो बात है ये बार बार भगवद गीता में आती है, और जो है ना आपके दिमाग में बार बार ये बातें फिर से बैठाई जाती है भगवद गीता में। जबकि हमारा जो दिमाग है वो कैसा है, हमारा दिमाग कैसा है, बार बार भूल जाते हैं। तो अर्जुन जो कह रहे हैं विस्तार सो मैं, यहां विस्तार से मैंने सुना है, यहां ये मतलब नहीं है कि विस्तृत विधि भगवान ने बताई हो सृष्टि और प्रलय की, नहीं, बल्कि यहां पर विस्तार का मतलब बारंबार है ना। तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा बारंबार बारंबार भगवान ने ये बातें बताई हैं। भगवद गीता में इस विषय की पुनरावृत्ति हुई है बार बार, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी ये लिख रहे हैं तात्पर्य में कि अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुके हैं, है ना। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त वे इन सबसे पृथक असंग रहते हैं। अब यहां असंग रहते हैं भगवान, असंग रहते हैं। यहां कमल पत्र की जो तुलना की है भगवान के नेत्रों से, है ना, तो कमल पत्र की विशेषता क्या होती है? पानी में रहते हुए वो पानी से स्पर्श नहीं होता उसका। तो भगवान जो है इस जगत में मतलब जन्म लेते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, लीलाएं करते हैं, लेकिन इस भौतिक संसार के जो कलुष है, जो दोष हैं, उनसे उनका स्पर्श नहीं होता, इसलिए कमल पत्र से भगवान की तुलना की है। हालांकि उनके नेत्रों की तुलना की है जो ने कमल पत्र, लेकिन कमल पत्र की एक विशेषता जो है वो ये है कि वो पानी में रहते हुए भी पानी से गीला नहीं होता है। तो भगवान भी इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में रहते हुए भी भौतिक प्रकृति से बिल्कुल असंग हैं, बिल्कुल प्रभाव नहीं है भौतिक प्रकृति का। ये जो ना कमल पत्र से भगवान की तुलना अर्जुन ने की है। जैसे पद्म पत्र में वाम भसा, पांचवें अध्याय में ना श्लोक, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करो दिया लिप्ते रस पापेन, पद्म पत्र में वाम भसा है ना, कि वो व्यक्ति भी जो है ना जो भगवान में अर्पित करके कर्मों को करता है तो वो भी पाप से लिप्त नहीं होता है। ऐसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी से लिप्त नहीं होता है। तो पापों के बीच में रहते हुए भी जो भक्त है वो पापों से लिप्त नहीं होता है। और ये भौतिक संसार क्या है, पापों का समुद्र है, पाप का समुद्र है। तो पाप के समुद्र में खिला हुआ जो है ना वो कमल के समान रहता है, कमल के पत्ते के समान रहता है, उसमें बिल्कुल भी लिप्त नहीं होता है पाप से, है ना। तो भगवान भी जो है ना इसी प्रकार के हैं कि इस भौतिक संसार से लिप्त नहीं होते हैं, असंग रहते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जैसा कि भगवान ने नवे अध्याय में कहा है कि वे सर्वव्यापी हैं तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। यही कृष्ण का अचिंत ऐश्वर्य है जिसे अर्जुन स्वीकार करते हैं कि उन्होंने भली भांति समझ लिया है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त होता है। अब हम आपसे ही कुछ प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि ऐसे श्लोक जो है ना आप लोगों को बताना है जिनमें ये बातें भगवान ने बार बार कही हैं, दो प्रकार की। एक तो ये बात है कि शरीर नश्वर है, अनित्य है, ये बातें भगवान ने कही हैं, ऐसे श्लोक निकालिए। और दूसरी बात भगवान ने जो कही है कि वे अविनाशी हैं, है ना। तो ये दो बातों पर जो है ना, पहले तो मैं आपको गिनाऊंगा श्लोक। तो हम अभी यहां से ऐसे ही पीछे जाते हैं, उल्टी दिशा में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप पीछे खोलिए पेज, तो आप दसवें अध्याय का 42वां श्लोक निकालिए, इसमें भी ये बात है, इसमें भी ये बात है। क्या कि भगवान अविनाशी हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टव्याहम इदम कृतनम एकांशेन स्थितो जगन। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है, मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। देखा, ये भगवान का अविनाशी महात्म्य है, है ना। तो 42वां श्लोक, अच्छा इसके पहले आपने कह लिए 39वां श्लोक। 39वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, इसमें भी भगवान का महात्म्य है। क्या कहते हैं, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यथ्यां मया भूतं चराचरं। यही नहीं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं, ऐसा चर तथा चर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तो ये भगवान का अविनाशी महात्मा है। अच्छा इसके पहले आप निकालिए श्लोक संख्या 33वां, पीछे चलो पीछे। तो इसके पीछे 33वां श्लोक में भगवान जो है क्या कहते हैं, अक्षराणाम अकारोऽस्मि द्वन्द्वास्तामासिकश्च अहमेवाक्षयः कालो दाताहं विश्वतो मुखं। अक्षरों में मैं अकार हूं और समासों में द्वंद्व समास, मैं शाश्वत काल भी हूं और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूं, है ना। अक्षय काल, अविनाशी काल, तो ये भगवान का अविनाशी महात्म्य है, है ना। तो इस प्रकार से 33वां श्लोक हुआ। अब इसके पहले आप आइए श्लोक संख्या 30। श्लोक संख्या 30 में भगवान क्या कहते हैं, प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां काला कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोहं वैनतेयश्च पक्षिणां। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूं, दमन करने वालों में काल हूं, पशुओं में सिंह हूं तथा पक्षियों में गर्व हूं। तो यहां दमन करने वालों में काल, काल है ना। तो भगवान अपने को काल कह रहे हैं। कलयताम का मतलब गणना करने वाले भी, गिनती करने वालों में काल, कि काल एक एक की गिनती कर लेता है, काल की गिनती कोई नहीं कर पा रहा है कि नहीं। अभी तक काल कितना बीत चुका है कोई नहीं हिसाब निकाल सकता कि अभी तक काल कितना बीत चुका है, लेकिन काल ने सबकी गिनती कर ली है कि कौन कौन बीत चुके हैं, काल के रिकॉर्ड में सब कुछ नोट किया हुआ है। तो ये जो है ना भगवान का विनाशी महात्मा है ना। अब 30 के पहले श्लोक संख्या 20 पर आइए, पीछे चलिए श्लोक संख्या 20। इसमें भी देखिए यही चीज है कि भगवान सबकी उत्पत्ति और विनाश के कारण है, भगवान अविनाशी हैं। भगवान कह रहे हैं अहम आत्मा गुणा केश सर्वभूताशय स्थित अहम आदिष्ट मध्यम च भूतानां अंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूं, मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूं, है ना। तो देखा भगवान अविनाशी हैं और सब जीवों का जो है ना उत्पत्ति प्रलय, इससे पता चलता है कि जल्दी जल्दी हो रहा है सबका जन्म मरण। इस जीवन का कुछ भी महत्व तो नहीं, अगर कृष्ण का भजन नहीं किया इस जीवन में तो जीवन बिल्कुल बेकार चला गया, क्योंकि जन्म मरण ही हो रहा है और कुछ नहीं, है ना, इससे पता चलता है। अब श्लोक संख्या 19, श्लोक संख्या 19 में भगवान क्या कह रहे हैं हंतते कथयिष्यामि दिव्या है आत्मविभूतयः प्राधान्यतां कुरु श्रेष्ठ नास्यतो विस्तरस्मि। श्री भगवान ने कहा हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है, न अंतो अस्ति, मेरे ऐश्वर्य का अंत नहीं है ना। तो इसमें जो है भगवान अपनी महिमा बदला रहे हैं, अपनी अविनाशी महिमा बदला रहे हैं। अच्छा, तो इस तरह से हमने चर्चा की है, और भी इस श्लोक संख्या 13 भी निकालिए, इसके पीछे पीछे चलिए इस श्लोक संख्या 13 है, हाँ 12 और 13 दोनों है, 12-13 दोनों है। अर्जुन ने कहा है तो अविनाशी महिमा है, अर्जुन ने कहा है तो वो भी तो अर्जुन ने सुना है ना, इसलिए ये भी आप गिन सकते हो कि अर्जुन ने ये भी तो सुना है। अर्जुन क्या कह रहे हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम सागुतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहु स्वाम ऋषिया सर्वे देवर्षि नारद तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीष्मि। अर्जुन ने कहा आप परम भगवान परम धाम परम पवित्र परम सत्य हैं, आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं, नारद असित देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके पहले 8वें श्लोक पर आइए, पीछे चलिए 8वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें भी मतलब जीवन कितना अनित्य है और भगवान जो है कैसे अविनाशी हैं, इसका पता चलता है। भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितम्। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है, जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। 8वां। अच्छा, अब आप आइए पीछे 3रा श्लोक, श्लोक संख्या 3। इसमें कितना सुंदर भगवान बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान कहते हैं यो मामजम मनादिं च वेति लोक महेश्वरम असम्मूढा समर्थेषु सर्व पाप है प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है ना। अच्छा, अब इस श्लोक संख्या दो पीछे आइए। इसमें भगवान क्या कहते हैं, बहुत सुंदर भगवान कह रहे हैं, नमे विदुहो सुरगणां प्रभु नाम महर्षयां अहमादिर हि देवानां महर्षीणां च सर्वशं। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ, उद्गम हूँ। भगवान कह रहे हैं, भगवान का अविनाशी प्रभाव देखो कितना। जो अर्जुन ने कहा कि विस्तार से सुना है, तो यही मतलब है, विस्तार का मतलब बारंबार अर्जुन ने सुना है, अर्जुन का मोह दूर हो गया है ना। अब नवे अध्याय में भी देखिए, नवे अध्याय में श्लोक संख्या 33 देखिए, श्लोक संख्या 33, इसमें भगवान क्या कह रहे हैं।